ఓం శాంతి. ఆప్ సభీ బాబా కే నూరే రతన్ హై. బాబా ఆప్సే మిల్నే ఆ రహే హై యా ఆప్ బాబా సే మిల్నే ఆయే హై? జో కహతే హై कि बाबा हमसे मिलने आ रहे हैं वो हाथ उठावे, परंतु ऐसे भी हमारे भाई बहने हैं कि भाई हम बाबा से मिलने आए हैं वो हाथ उठावे, देखो वो भी उठा रहे हैं. तो अब बाप और बच्चों में कौन ज्यादा उत्सुक है जो मिलने लिए? मुझे लगता है 5000 साल से बिछड़ा हुआ कौन है, हम हैं या बाबा है? हम तो फिर भी भक्ति करते आए, पूजते आए, याद करते आए, पर भगवान तो ऊपर बैठे हैं. तो मुझे लगता है कि भगवान को हम बच्चों से मिलने की ज्यादा उत्सुक है. अब आज हम थोड़ा सा अपनी ही रूरिहान करेंगे कि बाप को क्यों हम बच्चों से मिलने की उत्सुकता है. करोड़ों बच्चे हैं, परंतु हम थोड़े से गिने चुने बच्चे जो इस दुनिया को भूलकर छोड़कर यहां तक आप पहुंचे हैं, तो कुछ तो होगा जो स्वयं भगवान ऐसे बच्चों से मिलने आ रहा है. तो ऐसी क्या विशेषता है हमारे में जो बाबा हम बच्चों से मिलने आए हैं? तो बाबा कभी कभी मुरली में जब बोलते हैं ना, तो बच्चे नंबरवार हैं. तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसे कैसे बाबा? तो सब बच्चे हैं आपके, सब बाबा बाबा कहते हैं, तो आप मुरली में कह देते हैं नंबरवार बच्चे हैं. तो ये कौन सा नंबर है, ये क्या है? कोई एग्जाम तो है नहीं, बाप बच्चों का संबंध है ये, तो इसमें भी नंबरवार किस बात का है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई तो गुंजाइश होगा जो स्वयं भगवान कह रहा है कि बच्चों में भी नंबरवार है. फिर एक शब्द और भी बोल देता है, पुरुषार्थ अनुसार है, ये भी बोलता है. तो ऐसी क्या बात है जो नंबरवार हो जाते हैं तो पुरुषार्थ अनुसार हो जाते हैं? तो थोड़ा सा हम बच्चों को फिर सोचना पड़ता है कि नंबर वन बच्चे कौन है फिर भाई, और अधिक से अधिक पुरुषार्थ करने वाले बच्चे कौन है जिनको बाबा कहता है नंबर वन बच्चे हैं. तो इसमें भी मैं आपको एक अपना हंसी का अनुभव सुनाता हूं. तो जब पांडव भवन था, बहुत छोटा सा, आप सभी ने देखा है, बाकी बिल्डिंग तो बाद में बना. मैं जब आया था तो छोटा सा पांडव भवन था, कोई हॉल नहीं था. बाबा मम्मा दोनों बैठे हुए हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं, हम सुन रहे हैं. तो अचानक बाबा मुरली में कह देता था, मम्मा नंबर वन है, मम्मा नंबर वन है, ऐसा बोलते थे. अरे जिसमें स्वयं भगवान आए, सब कुछ त्याग करके बाबा ने, तो ऐसा साधारण जीवन जो बाबा कहते हैं ना बेगर टू प्रिंस, तो जो स्वयं प्रिंस था, आजकल कहते हैं ना ये पद्मापति मल्टी मिलियनर बिलियनर, तो बाबा तो उस समय का पता नहीं क्या था वो, क्योंकि आप सोच सकते हो 350 माताएं बहनें 14 साल तक एक ही घर में रहे, छोटा सा परिवार है ना 350 लोग एक घर में, और उनको 14 साल संभालना, इसके बाद भी अबू में बाबा ने संभाला, तो उस समय का वो क्या करोड़पति अरबपति होगा, जो आज की जमाने में तो वो तो ये तो कुछ भी नहीं है जो बाबा के सामने। मुझे निर्मला दीदी कहती थी, जो बाबा की बड़ी बच्ची, तो हम लोग तो पत्थर से नहीं कभी खेले हैं, डायमंड से खेलते थे। तो ऐसे बाबा जिनमें स्वयं भगवान आया और एकदम साधारण, त्याग का कोई सीमा नहीं, क्या बाबा का बाथरूम, क्या रहने का, जो सोने की कटिया अभी भी रखा हुआ है आप देख लीजिए, राजस्थान में ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा, अभी तो सब मॉडर्न हो गए हैं। तो इतना साधारण बाबा बना, सैंपल और एग्जाम्पल बना, और एक दिन भी बाबा ने, लास्ट डे भी बाबा ने मुरली चलाई थी। तो ऐसे बाबा हर बात में नंबर वन, पर वो कहे मम्मा नंबर वन, मम्मा नंबर वन। तो इस राज को मैं कई बार सोचता था कि ये कैसे हो सकता है, तो नंबर वार में मम्मा को नंबर वन, फिर हम देखते हैं मम्मा के लिए महिमा भी तो है भाई, स्टूडेंट के नाते मम्मा को विद्या देवी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, आज तक भी सरस्वती की पूजा करते हैं हर स्कूल में। तो बाबा वो नंबर वन कह रहे हैं, कुछ तो होगा बाबा मम्मा में, कुछ तो होगा, बाबा क्यों कह रहा है मम्मा को। तो मैं यही सोचा कि भी मैं भी अभी बाबा को फॉलो करूं या मम्मा को फॉलो करूं। बाबा वो भी एक समस्या मना देता था, सन शोस फादर मदर दोनों बोल देता था, तो आपको फॉलो मां बाप को करना है ऐसा बोल देता था, ये नहीं कहा कि भाई बाबा को फॉलो करो तो या मम्मा को फॉलो करो, नहीं, दोनों। परंतु मुझे आया कि भाई जब बाबा मम्मा को नंबर वन कहता है तो मैं क्यों नहीं मम्मा को फॉलो करूं, वैसे भी थोड़ा बच्चों को मां से ज्यादा प्यार रहता है, और मैं तो छोटा ही बच्चा था उस समय पर, 20-21 साल का, और मम्मा ने हाथ पकड़ के चलाया हमको, मतलब इस ज्ञान में कैसे चलना हर बात मम्मा सिखाती थी, मम्मा से पूछे बिना बाबा से भी बात नहीं करता था, मम्मा से थोड़ा ज्यादा ही प्यार। परंतु ये बात जो है ना, बाबा मम्मा को नंबर वन क्यों कहता था, ऐसी क्या बात थी मम्मा के जो मम्मा नंबर वन, केवल नंबर वन बाबा मम्मा में नहीं सारे परिवार में, मैं देखूं सब दीदियां दादियां सब लोग कहे मम्मा 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 नंबर वन, ऐसी क्या विशेषता थी मम्मा में, मैं इस पर सोचने लगा, क्योंकि साइंस की बुद्धि तो पहले से ही बाबा ने दे दिया था, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया हुआ था। तो मैंने ये पाया कि बाबा ये जो नंबर वन या नंबर वार बच्चे जो बाबा कहता है ये किस बात का है। तो मुझे समझ में ये बात आई। मैं कभी कभी जगदीश भाई से भी थोड़ा सा चर्चा करता था, क्योंकि हमारे समय में जो बुद्धियों का बुद्धि जो है वो हमारे जगदीश भाई भी होते थे। जितने भी जो साहित्य है वो सारा जगदीश भाई लिखते थे। जगदीश भाई जितने भी किताब जो ज्ञान के है, चाहे मम्मा के चाहे बाबा के, उन दिनों में जगदीश भाई लिखते थे। तो इसीलिए कोई बात समझ में नहीं आता तो जगदीश भाई से पूछने में थोड़ा सहज हो जाता था हमको। तो हमने ये पाया कि बाबा का नंबर वन जो कहने का या नंबर वार जो कहते हैं वो एक बात का है, वो है बाबा के ऊपर निश्चय। पहली तो मालूम हो गया मुझे कि भाई ये निश्चय के ऊपर बाबा कह रहा है। तो मैं इसीलिए आप सबको ये हमारा अनुभव सुना रहा हूं, क्योंकि आप सभी निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हैं, तभी तो यहां तक आए हैं। निश्चय नहीं होता तो यहां तक तो नहीं आते हैं। यहां किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, यहां कोई साधु संत गुरु के लिए नहीं आए हैं। स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव से मिलन मनाने आए हैं। तो जिससे मिलने आए हैं, जिनका यहां कोई मूर्ति नहीं है, रूप नहीं है, फिर भी आप सभी यहां आए हैं, तो इसी को तो निश्चय कहते हैं। शिव बाबा के ऊपर निश्चय नहीं होता तो हम सभी यहां तक नहीं आते। तो मुझे ये पक्का हो गया कि ये जो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नंबर वन, ये मुख्य बात जो है बाबा के ऊपर निश्चय की बात है। तो फिर उस पर विचार किया तो ये तो अच्छी बात है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं कि अपने बाप को छोड़ के किसी और बाप कर निश्चय करे, ऐसा तो हो ही नहीं। या किसी ने, मैं नहीं समझता हूं किसी मां बाप ने या किसी ने पूछा होगा कि आपको आपके बाप के ऊपर निश्चय है, तो उसको तो गुस्सा आ जाए, ये क्या बोल रहा है, मेरे बाप के ऊपर मुझे निश्चय, ये कोई पूछने की बात होती है। तो पर हमारा बाप ने तो सारा मार्क्स उसी पर ही दे दिया कि नंबर वार निश्चय बुद्धि विजयते संशय बुद्धि विनश्यति, सारी बात निश्चय के ऊपर दे दिया। तो इस निश्चय पर मैंने थोड़ा सा विचार किया कि भाई बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं, सबको तो निश्चय है, अपना बाप के ऊपर किसको निश्चय नहीं है। तो मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, जो बाबा से मिलने जाए पहली बार बाहर आते कहेगा कि मेरा बाबा है, अब बताओ, और हमारा बाबा है, और जो बाबा से मिलके आता है तो वो शुरू कर देता है मेरा बाबा है। तो ऐसी क्या जादू है, ऐसी क्या निश्चय है ये, जो निश्चय के आधार पर नंबर वन बनते हैं। तो मैं उस पर देखने लगा कि भाई किसको देखूं, तो मम्मा को ही देखा। तो मम्मा में ऐसी क्या विशेष निश्चयता जो बाबा कहते थे कि भाई ये नंबर वन है। तो मैंने ये पाया, मम्मा ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा दो कभी नहीं देखा। भले ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, पर मम्मा को सदा ही शिव बाबा दिखाई देता था। मम्मा को कभी ये नहीं लगता है कि भाई ये ब्रह्मा बाबा ने बोला या शिव बाबा ने बोला। कई बार उस समय पर थोड़ा कुछ होता था, क्योंकि आपने मुरली में कभी कभी सुना होगा तो बीच बीच में, क्योंकि गुलजार दादी का पार्ट और ब्रह्मा बाबा का पार्ट में थोड़ा सा अंतर था। गुलजार दादी बाबा जाने के बाद जब नीचे आते हैं तो हम दादी को बोलते हैं आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो गुलजार दादी को कुछ नहीं पता होता है बाबा ने क्या कहा, तो नीचे आके जब सुनाते हैं तो दादी सुनती है, सुनाओ सुनाओ क्या बोला बाबा ने सुनाओ। परंतु ब्रह्मा बाबा में जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा बोलते थे तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा बताते थे, तो पहले ब्रह्मा शिव बाबा का महावाक्य पहले कौन सुनते हैं बच्चे, ऐसा पूछते थे, तो फिर अपने आप ब्रह्मा बाबा उत्तर देते थे, देखो शिव बाबा यहां बोलता है, ब्रह्मा बाबा यहां सुनता है, आप बताओ अभी सबसे पहले कौन सुनता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा बाबा अपने को ये फील करते थे और सब कुछ सुनते थे। कभी कभी बाबा जब कहते कि बुद्धू बच्चे ये नहीं बोल सकते ये नहीं, तो बाबा कभी कभी बीच में, ब्रह्मा बाबा भी बच्चा है स्टूडेंट नंबर वन है, तो बोल देते थे बाबा मैं बुद्धू नहीं हूं मैं भी कर सकता हूं, तो कभी कभी मुरली में बीच में आ जाता। तो भले हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का कभी कभी देखते भी थे, पर हमारी मां मम्मा कभी भी ये नहीं समझा कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। तो सदा ही मम्मा पहली दिन से अंत तक एक ही आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा है। ये आता जाता है या अब नहीं है ये कभी भी मम्मा ने नहीं सोचा। मेरा भी अनुभव ऐसा रहा, जब भी मैं बाबा के सामने कभी छुट्टी लेने जाते हैं कभी ये है, तुरंत बाबा की प्रवेशता हमने देखी है। कभी आपको ऐसा नहीं होता, क्यों? ब्रह्मा बाबा बहुत सॉफ्ट, बहुत रॉयल, बहुत स्वीट और बहुत धीरे, पर शिव बाबा जब मुरली चलाता है तो देखो तो कैसे शेर है। तो जब ब्रह्मा बाबा क्लास में आते, संदल पर बैठते, जब गीत बजना शुरू होता तो जब गीत आधा ही भी नहीं बजता है बंद करा देते इशारे से, तब पर मुरली शुरू करने के पहले एक आवाज जरूर आता था बाबा का गले से, ऐसा बाबा करते थे। और हम उस टाइम पर छोटे थे, 20-21 साल के, सब यंग बैठे हुए हैं, तो एक दो को यूं यूं करते हैं, देखो देखो शेर आया शेर आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आवाज तो हम सब सुने थे, बहुत स्वीट, बहुत रॉयल, बहुत धीरे, बहुत गंभीर, पर शिव बाबा का तो शेर जैसा। आप अभी भी मुरली है, साकार मुरली का कैसेट्स है तो आप सुनेंगे तो शेर जैसा आवाज सुनने में आता है। तो बाबा ने हम बच्चों को दो पार्ट होते हुए भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का रथ, तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा अनुभव कराया कि सब कुछ शिव बाबा ही करता है, जिसके कारण बाबा को भी शिव बाबा को भी दो टाइटल है, करण करावनहार, करण करावनहार, दो टाइटल है, करने वाला भी कराने वाला भी कौन है? शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा को नहीं कहा जाता। तो ये बात हमने मम्मा में देखा कि मम्मा को ये निश्चय था जो करण करावनहार जो है वो एक परमपिता परमात्मा है, एक शिव बाबा है। तो इसीलिए निश्चय में भले इस समय पर आप सभी बाबा के अति लाडले बच्चे हो, जैसे मां बाप गरीब थे और जब बच्चा आया तो तब तक कमा के अच्छा बड़ा साहूकार बन गया हो, तो वैसे आज भले बाबा ने इतना बड़ा ये कार्य किया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम, तो इतना बड़ा परिवार, 10 लाख परिवार बाबा के बैठे हैं, परंतु जो टाइटल हमने पहले बाबा का मुख से सुना था, जो मम्मा के मुख से सुना था, करण कर हावनहार शिव बाबा है, तो आज हम सबको भी हर वक्त, हर घड़ी, हर सेकंड ये निश्चय है कि जो कुछ भी देख रहे हैं, हो रहा है, चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, चाहे सारे विश्व में हो, क्योंकि बाबा को त्रिमूर्ति शिव परमात्मा कहते हैं, तो बाबा के जो 3 कार्य है, स्थापना का तो हम सभी देख रहे हैं, पर सारी दुनिया तो खाना खा रहे हैं, पालना तो हो रहा है, और सभी को बाबा कहते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, ये नहीं सिर्फ बीके मेरे बच्चे हैं, नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं, तो पालना और समझो विनाश होता आता है और बहुत बड़ा होना भी है, तो वो कार्य भी ईश्वर के तरफ ही इशारा देते हैं। तो इसीलिए निश्चय क्या होता है वो हमने मम्मा में प्रैक्टिकली देखा। कुछ भी हुआ, हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, राइट रॉन्ग, ये वो, कुछ भी है तो मम्मा उसको करण करावनहार कहते। तो अच्छा हुआ तो भगवान ने, दुख हुआ तो हे भगवान, नहीं। तो इसीलिए निश्चय में नंबर 1 ही 1 क्यों है, क्योंकि कभी उनको संशय नहीं आया। तो इसीलिए 18 अध्याय का गीता सुनाना पड़ा भगवान को, जो अर्जुन को समझाने के लिए कि भाई ये जो आप मरे मार रहे हैं, ये सब देख रहे हो, ये पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी होंगे, ये ज्ञान उनको दिया। अच्छा, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी होंगे, तो इसको कहा जाता है ज्ञान। जो करण करावनहार पार्ट का हम सबको निश्चय हो, तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, राय बहादुर बहुत है, हर बात के लिए अपना विचार देने वाले बहुत है, परंतु एक मम्मा ही थी जो बाबा कहे जी बाबा। हम सब फिर भी बाबा से कुछ लेन देन करते थे, बोलते थे, सुनते थे, करते थे, पर मम्मा का एक ही पाठ था जी बाबा, जो बाबा कहे वही करना है, जिसको जी बाबा कहते हैं। तो अभी दूसरा निश्चय जो मुरली हम सब सुनते हैं, अभी भी साकार मुरली रोज सुनते हैं, तो ये मुरली भी जब बाबा सुनाते हैं, फास्ट सुनाते हैं, तो यीशु दादी जी लिखते थे, तो यीशु दादी इतना फास्ट लिखते थे, परंतु हम सब के पास आने के पहले वो मुरली मम्मा के पास जाती थी और मम्मा उसको करेक्शन करती थी, माना यीशु दीदी लिखने के बाद भी उसमें कुछ नीचे ऊपर हो वो मम्मा करती थी। अरे बाबा वो कैसे, मम्मा तो केवल सुनती थी, तो माना मम्मा की मेमोरी भी इतनी पावरफुल थी। वैसे हम जानते हैं हमारी जानकी दादी की मेमोरी जो है, अभी भी आप देखो 100 साल कहेंगी 4 बातें ऐसा बोल देंगी, कितनी पावरफुल मेमोरी है। तो ऐसे मम्मा को भी ये गायन है विद्या देवी सरस्वती, बाबा ने जो कहा हर शब्द मम्मा के हृदय में, मम्मा की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता था। तो यीशु दादी से कुछ नीचे ऊपर हुई हो तो उसको करेक्शन करा के एग्जैक्ट बाबा के मुरली। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, सारा साल तो बाबा के सामने मैं नहीं हूं, मैं बेंगलुरु में रहता था, तो अभी हम कैसे मम्मा को फॉलो करें कि हर शब्द बाबा का हमको हमारा दिल में आवे। तो हमने इसमें थोड़ा सा हमारे प्रकाशमणि दादी को फॉलो किया, तो दादी जी को कहा जाता है कम से कम 4 बार प्रकाशमणि दादी मुरली पढ़ती थी। तो बाबा को फॉलो करने का, बाबा पर निश्चय है, तो निश्चय का ये भी एक नंबर 1 बनने का प्रूफ है कि मुरली पे प्यार तो है, परंतु मुरली को कितना हम धारण करते हैं, क्योंकि हर रोज मुरली नहीं आ रही है। तो आज की मुरली मैं आज पढ़ू नहीं, उसको रिवाइज नहीं करूं और उसको फॉलो आज नहीं करूं, तो कल तो फिर एक 3 पेज का मुरली आ जाता था। तो इसीलिए मम्मा जो एक बार सुनती थी तो वो सब कुछ मम्मा के दिमाग में आ जाती थी। तो हम बच्चों को भी उस पर मेहनत करना जरूरी है। जो बाबा ये नहीं कहे कि भाई ये नंबर 1 नहीं, बाबा हम भी नंबर 1 तब है जब मुरली से प्यार तो है, पर कितनी बार उसको हमने रिफाइंड किया, कितनी बार हमने इसको कम से कम, भले टीचर्स भी है तो वो लोग भी सुनाने के पहले एक बार पढ़ते तो है ही है, और इसके बाद क्लास में सुनाते हैं, तो इसके बाद सारे दिन में भी 1-2 को हम क्या बात करें। तो कभी कभी हम सच्चे दोस्त हो तो 1-2 से बात करना है, तो आज बाबा ने क्या बताया, आज बाबा की मुरली की पॉइंट सुनाओ, दोस्त है तो 1-2 से थोड़ी सी हंसी करो तो मुरली का पॉइंट रिपीट हो, जो आज की मुरली आज हमारे अंदर वो धारणा हो जाए, क्योंकि फिर कल दूसरी मुरली 3 पेज की हमारे सामने आने वाली है। तो इसीलिए मुरली को पूरी तरह से धारण करना भी नंबर 1 का निशानी है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं बाबा ये नंबर 1 क्यों कहा, क्योंकि नंबर कहां से शुरू हुआ, 1 तो सब कुछ, जिसको ड्रामा भी आप कहो कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, चाहे ब्राह्मणों कुल में या चाहे दुनिया में, करण करावनहार एक ही है, दूसरा नहीं है, तो बाबा है। तो इसीलिए हमको कभी संशय नहीं आएगा ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, नहीं, ये नंबर 1। दूसरा, जो बाबा की मुरली जो हम सुनते हैं तो उसको अपने अंदर कितनी हम धारण करते हैं उसके ऊपर हमारा नंबर 1 शुरू होता है। जैसे हर स्कूल में, हर क्लास में स्टूडेंट्स भी नंबर 1 होते हैं, नंबर के आधार पर नंबर 1 होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। तो मुरली हम कितना एक्यूरेट समझते हैं और उस अनुसार हम चलते हैं, तो इस पर भी हमारी निश्चय की परीक्षा होती है। आप कहेंगे तीसरा किस बात में होती है, क्योंकि ज्ञान का योग के लिए बाबा कहते हैं, तो योग में भी नंबर 1 की भी निशानी है। बाबा तो 8 घंटे के लिए कहते हैं, बच्चे कम से कम 8 घंटा बाबा की याद रहे, तो यहां भी हम देखते हैं नंबर 1 है। तो कोई बच्चे तो चार्ट रखते हैं, चार्ट रखना बहुत बाबा हम लोगों को कंपलसरी कहते थे, क्योंकि जो योग की याद की जो सब्जेक्ट है इसको बाबा बहुत प्रोमिनेंस देते थे। पर नंबर 1 4 सब्जेक्ट में ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि इस ज्ञान में एक कशिश है, समझ है, अच्छा लगता है जब हम दूसरे किसी को सुनाते हैं तो खुशी इतनी हो जाती है। तो इमीडिएट हम बच्चों को अच्छा क्या लगा, ज्ञान, क्योंकि सुनते भी खुशी और सुनाते भी खुशी। बट योग ऐसा नहीं है, योग को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। भले नाम बाबा ने बड़ी होशियारी से दिया, क्या दिया, सहज योग है, कितने कैसा बाबा कहता है बच्चों को, जैसे सहज योग है, पर हम देखते हैं कि थोड़ा है तो योग में ही थोड़ी मेहनत है। तो जब लिखने जाते हैं तो मैं कितना मिनट याद किया, घंटा तो छोड़ो बड़ा, 8 घंटा तो लंबा चौड़ा लग रहा है। तो मैंने देखा दूसरी सब्जेक्ट में तो नंबर वार तो 100% है, ज्ञान में भले बहुत होशियार है, जितने भी बच्चे हैं अभी इस समय पर ज्ञान में हम सब परिपूर्ण है, हर बात मालूम है, हर बात का हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बाबा 100% भी दे सकता है सीधा, पर जब योग की बात आती है तो इसमें हम खुद भी कहते हैं ठीक है बाबा अभी 75 भले दे दो, अभी थोड़ा और हम मेहनत करेंगे तो फिर 80 दे देना, 90 दे देना, तो नंबर हम अपने आप को ही देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब हम सब बच्चों को थोड़ा सा अभी ज्यादा मेहनत योग का ऊपर ही करना है। पर तीसरा सब्जेक्ट भी जो है ज्ञान योग धारणा, अब मैं वो बात नहीं कहूंगा, पर चौथा जो सब्जेक्ट है सर्विस, नंबर वन है, सब बच्चे रात दिन लगे हुए हैं। 80 साल यज्ञ का हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा साल जो है सेवा में गया है, हर एक बच्चा किसी न किसी तरह से लगा हुआ है, हर एक बच्चे का कोई न कोई प्रकार का लगन है जो सेवा का। तो हम बाबा को कहते हैं बाबा सेवा के लिए तो आप 100% दे ही दो, हर बच्चा यथाशक्ति जितना हो सकता है सेवा जरूर करता है, और वह तभी तो ये इतना बड़ा है। आज 10,000 सेवा केंद्र 140 देशों में, 10 लाख परिवार, ये सब ऐसे ही नहीं बना है, ये सब हम बच्चों की सेवा का लगन से बना है, एक एक बच्चा लगा रहा है रात दिन। तो इसीलिए बाबा से हम कहेंगे बाबा सेवा का भी 100% दे दो, ज्ञान में भी बहुत होशियार है बच्चे, इतना रिफाइंड ज्ञान है एक हफ्ते के अंदर सब कुछ सीख जाते हैं। जैसे आजकल जो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको कुछ कहने जाए नहीं 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 हमको गूगल बता देता है जो भी चाहिए। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे भी ये कहते हैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो अभी उत्तर दे सके। तो दो सब्जेक्ट में तो पास हो गए हैं। अब धारणा की बात आती है, धारणा हम बच्चों की इस समय पर ऐसी स्थिति पे है बहुत अच्छा लगता है। किसी से भी हम पूछे ब्राह्मण जीवन कैसा है, बहुत अच्छा है। तो हमारी जो जीवन है इस समय पर, जो सर्वश्रेष्ठ जीवन जो ब्राह्मण जीवन है, तो हम सब संतुष्ट है। जो ये कहे कि हम ब्राह्मण जीवन हम बाबा बहुत संतुष्ट है वो हाथ उठाए, तो देखो सभी बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं इसमें हम सब संतुष्ट हैं। ब्राह्मण जीवन की धारणा जो है इसमें भी हम नंबर वन है, परंतु बाबा नंबर वन कह रहा है, हम बच्चे भी नंबर वन कह रहे हैं, पर दुनिया इतना नहीं मान रहा है। अभी हम जो कहना चाहते हैं ज्ञान देखो पूरा दे रहे हैं हम, परंतु हमारी जो जीवन है ये एक बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, और हम लोग इसमें संतुष्ट है, ये बात दूसरा कोई कहे हमारे लिए ये अभी तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आप कहेंगे धारणा ब्राह्मणों का प्याज लहसुन ये वो वगैरह कुछ नहीं, ये सब छोड़ दिए हैं, गुस्सा भी हम नहीं करते हैं, यहां तक भी कोई कोई कह देते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब छोटी छोटी चीजें ये भी सब हो गया है कुछ नहीं, फिर भी दुनिया नहीं मानने लिए तैयार है कि भाई ये भी कोई चीज है। बाबा कहते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब एंजल्स है, फरिश्ता है, देवियां है, देवता है। बाबा महिमा कर रहा है, बाबा को सब दिख रहा है, पर दुनिया अभी तक नहीं मान रहा है। तो बाबा ने भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि चलन और चेहरे से ही प्रत्यक्षता होगी। हम जो कह रहे हैं भगवान आ चुका है, कलयुग जाने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, ये सब बहुत नशे से कहते हैं, माइक लेके बोलते हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं लोग। कितना सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मान नहीं रहे हैं। तो माना कुछ तो कमी है कि हमारी चेहरे में इनको सदा वो जो खुशी की, नशे की, जैसे हमारी गुलजार दादी को देखो, हंसती है सारा दिन, हंसती रहती। तो इस प्रकार हम लोगों का जो चेहरा जो है वो अभी तक इतनी खुशी का दुनिया को नजर नहीं आ रहा है। तो हम चेहरा देखते तो है, सुबह हरेक ऐना देखते हैं, बाल नहीं भी होगा ना, थोड़ा सा मैं भी यूं कर देता हूं ऐने के सामने, पर दुनिया का सामने हमारी चेहरा खुशी का है सदा, ये कुछ कैसा है। तो कुछ ना कुछ आपको दुनिया का सामने जो कमी है वो निकाल कर दिखाना होगा। ये रॉयल है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे शादी होती है ना तो कहते हैं लव मैरिज होता है। तो मैं जब बाबा से, ब्रह्मा बाबा से मिलने पहली बार आया 1960 में आया था, थोड़ा सा बुद्धि में लेके कि भाई इसमें भगवान आता है, मुझे वो देखना है, छोटा था सोचता था। परंतु जब मैं पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा, पता नहीं क्या हुआ, देखते ही मन में ऐसा फाइनल कर दिया कि है तो यही है मेरा गुरु, दूसरा कोई नहीं। इसको कहते थे कि भाई लव इन फर्स्ट साइट कहते हैं आज के जमाने में। तो वही वो दिन और आज के दिन मुझे तो वही अच्छा लगता है, सबसे अच्छा। भले श्री कृष्ण का भी बोलो, मैं कहता हूं ठीक है उनसे मिलेंगे, पर ये हमारा है। तो इसी तरह से हम बच्चे भी आज इतने लोगों से मिलते हैं, सारा दिन मिलते हैं, तो क्या उनको थोड़ा कुछ तो हमारे चेहरे से ये नजर आए कि ये खुश कैसे है। तो खुशी का जो चेहरा है, इस बार आप सभी यहां से जो जाएंगे ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि जैसे फोटो क्लिक करते हो आप लोग बाबा का, तो अपना भी एक स्वरूप, एक खुशी की चेहरा हमारा रहे, और हमारी चलन भी ऐसा लगे कभी दौड़ रहे हैं, कभी स्लो है, कभी ये है, नहीं, जैसे दादियां है, जैसे फरिश्ता हमारे देखे हैं आप प्रैक्टिकली। अभी भी बाबा ने सैंपल, तीन दादियां तो आपके सामने है ही है। तो क्यों नहीं हम लोग इस विश्व के सामने प्रत्यक्ष हो, क्योंकि है ही, बाबा ने तो टाइटली दे दिया है, देवता देवियां है। तो हम बच्चों में ये जो थोड़ी सी कमी है तो इसको हमको भरना है। तो लास्ट फिर वापस मैं एक ही सब्जेक्ट पे आता हूं, तो इस कमी को भी दूर कैसे करें, एक रस अवस्था कैसे रहे, उसके लिए थोड़ा सा योग की हमको ताकत चाहिए। तो उसके लिए और कुछ नहीं, शारीरिक तपस्या तो आप कर ही रहे हो, अमृत वेला है, क्लास है, जब जब समय मिलता है बाबा का कमरे में जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, ये तो शरीर का करते ही है हम लोग, स्टॉप करते हैं इंद्रियों को, कर्म को, ये तो करना ही है, इसको बढ़ाते जाना है। परंतु एक और चीज है जो मौन जिसको कहते हैं ना, ये मुख का नहीं है, वो शरीर का नहीं है, वो है मन का। क्योंकि हमको ही नहीं मालूम पड़ता है कई बार, जैसे इस शरीर में सांस चल रहा है, किसी को पता नहीं है कि भाई कितना बार चला, क्या चला, कोई ध्यान नहीं देते, चल तो रहा है, हार्ट भी चल रहा है, डॉक्टर नस पकड़ के देखते हैं, वो भी चल रहा है भाई, पर हम लोग सोचते नहीं है ये सब चीजें। तो इसी तरह से एक और चीज है जो आत्मा का एक मेन पावर है, वो मन, ये भी चल रहा है, आप चाहो ना चाहो वो चल रहा है, वो बंद नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अब जो हमको करने की जरूरत जो है, जिसको हम मौन कहते हैं, वो है अपनी मन को कितना समय हम शांत रख पाए हैं, जिसको कभी कभी एकांत कहते हैं, अंतर्मुक्ता कहते हैं, जो मैंने मम्मा में देखा। मम्मा को बात करते हुए बहुत कम देखा होगा लोगों ने, सब काम चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, पर मम्मा बोलते हुए या कुछ नहीं, हलचल में। तो ये हमको थोड़ा सा अभी ध्यान देना होगा। तो खुशी में रहना है तो भी तो थोड़ा सा शांति में रहना तो पड़ेगा। तो मन की शांति के ऊपर, मन को कैसे हम शांत रखें बाबा के साथ, लास्ट मुरली में जो बाबा ने कहा, साधनों से तो है, टीवी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब देख रहे हैं, परंतु वो नहीं हो तो बाबा को कहां बिठाएंगे, तो दिल में। तो दिल लोग समझते हैं ये है, पर हमारा दिल जो है मन है। मेरे मन में बाबा है तो वही मेरा दिल है। तो ये शांति का जो अभ्यास है, कितना समय मैं शांति में, मैं और बाबा, मेरा बाबा, तो ये हम जितना बढ़ाते जाएंगे तो फिर प्रत्यक्षता का समय बहुत नजदीक आता जाएगा। तो इस समय पर संगम का समझो लास्ट फेस जैसे चल रहा है, क्यों? क्योंकि बाबा ने कुछ समय से अचानक 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 का पार्ट बोलते आ रहे हैं। अचानक कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो रहा है। जब से बाबा ने अचानक कहा है, हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ अनुभव करते जा रहे हैं। एक फोन भी आता है, पता नहीं क्या है, ऐसा होता है। तो समय कुछ ऐसा चल रहा है, तो व्यक्तिगत तो हो ही रहा है, परिवार के रूप से भी हो रहा है, अब उससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आजकल कई बातें सुनते हैं, किसी देशों में कितनी बातें ऐसा अचानक अचानक, आजकल तो जैसे मौत जैसे होलसेल हो गया है, रिटेल नहीं है अब, परंतु ये भी कुछ नहीं है। तो बाबा का ये अचानक का जो मीटर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी समय कुछ भी ऐसी सीन आ सकता है, क्यों? सृष्टि की परिवर्तन तो फास्ट हो रहा है। अभी तो ब्रह्मा कुमारी तो नहीं बोलते हैं कि भाई विनाश होगा विनाश, नहीं, वो तो कवि का पूरा कर दिया है। अब तो एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस एक दो को धमका रहे हैं, जाति मत भेद धर्म ये भी बहुत अपने आप में शुरू किए हैं। तो इसलिए विनाश के बाद तो हम बोलते ही नहीं है, परंतु ये जरूर हम कहते हैं कि जो आने वाली जो दुनिया है वो है गोल्डन एज है, सतयुग है, जहां अखंड शांति है, पवित्रता है, दुख का नाम नहीं है। तो वो तब उनको विश्वास होगा जब हम जितने 10 लाख परिवार बाबा के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देगा, तभी वो हो सकता है। तो चेहरे पर खुशी आने का एक ही साधन है, मेरा बाबा। जितना समय हम सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ व्यतीत करते हैं, उतना समय हम लोग खुश रहते हैं। दूसरी किसी बात में भी हम लोग संपूर्ण खुशी जिसको कहते हैं वो नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं, देखो तन मन धन ये सब तो बाबा को आपने दे दिया है, बाकी था समय, बहुत बिजी थे, बहुत बिजी है, अभी भी कहते हैं हम बहुत व्यस्त है, फिर भी बाबा की याद में, बाबा के लिए हम वो कर रहे हैं, समय भी आप व्यर्थ नहीं गमा रहे हैं, आलटू फालतू में नहीं, पर बाबा के लिए बाबा के ट्रस्टी होके समय भी दे रहे हैं। पर बाकी एक चीज रहा, वो है संकल्प, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो उसको भी आप शांत कर सकते हैं। मैं तो कभी भी चाहे शांति में बैठ सकता हूं, जितना समय आपको मिले शांति में रह सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने अमृत वेला हमको दिया, दिन में पता नहीं टाइम मिले ना मिले, इसीलिए अमृत वेला तो हम सबको उठने के लिए बाबा ने कहा। तो इसी तरह से इस कलयुग की गोर कलयुग को देखते हुए इससे पार होना, पार कराना और बाबा को मददगार बनना, तो आप इस समय पर बाबा को कुछ देना चाहते हैं तो बाबा को चाहिए आपकी मन की साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस। बाबा जो कहता है वो है इस समय पर हम सबको सहयोग देना है। जितना हम साइलेंस में रह सकते हैं, तो जैसे कल बाबा आने तक तो भले 20,000-30,000 भाई बहने हैं, परंतु इतनी साइलेंस आप बाबा के साथ महसूस कीजिए, तो बाबा आके देखे क्या मैं परमधाम में हूं या मधुबन में हूं। बाबा को भी लगे कि यहां भी देखो मेरे बच्चे कितने साइलेंस में हैं। वैसे बाबा आते हैं तो सब साइलेंस में होते हैं, वो तो होते ही है, मैंने देखा है, परंतु बाबा के पहले भी हम अभी थोड़ा सा समय है, इतना साइलेंस का पावर। क्यों, कोई धंधा दोरी तो नहीं है, कोई खाना पकाना ये वगैरह ये भी काम नहीं है, सब काम को हम भूल करके, सब कार्य को दूर रख करके अभी आए हैं। तो प्लीज बाबा को आपको देना है तो बाबा का भंडारा यही है जो पावर ऑफ साइलेंस। कितना साइलेंस में रहिए, इतना आनंद लूटिए, इतना आनंद लूटिए जो बाहर जाके लोग कहे इसको क्या मिला है। ओम शांति।
पुराना नाता अब